ओम शांति। आज 24 जून 2017 मातेश्वरी जी के 24 अप्रैल 1965 के मातेश्वरी जी के स्मृति दिवस पर विशेष महावाक्य। इस दुख की दुनिया में कोई भी तमन्ना नहीं रखनी है। सुख की दुनिया में चलने के लिए अपने संस्कार देवताई बनाने हैं। गीता है,
किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
एक है मुस्कुराने की दुनिया और दूसरी है रोने की दुनिया। अभी कहाँ बैठे हो? रोने की दुनिया का अंत और मुस्कुराने की दुनिया अथवा सुख की दुनिया का अभी सैपलिंग लग रहा है। हम हैं संगम पर, लेकिन अभी उस सुख की दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अपना सारा अटेंशन उसी पर है। अभी इस रोने की दुनिया अथवा दुख की दुनिया में कोई भी तमन्ना धन संपत्ति की, मर्तबे की, मान इज्जत की, किसी भी बात की नहीं रखनी है, क्योंकि अभी तो सभी में धन संपत्ति में भी रोना ही है, यानी दुख ही है। इस दुनिया की कोई भी प्राप्ति जिसको प्राप्ति गिनी जाए, उसमें अभी कोई सुख रहा नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं कि जो मैं मुस्कुराने की अर्थात सदा सुख की दुनिया बना रहा हूँ, उसमें चलने के लिए अपने संस्कार भी ऐसे बनाओ। देखो, चित्रकार भी देवताओं के चेहरे बड़े अच्छे मुस्कुराहट वाले बनाते हैं। उनके चेहरे में पवित्रता, दिव्यता आदि दर्शाते हैं। तो अभी हम वही संस्कार बना रहे हैं अथवा धारण कर रहे हैं। वहाँ कोई दुख का चिन्ह है ही नहीं, वहाँ कभी रोना होता नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, अभी बहुत रोया, बहुत दुख पाया अर्थात दुख की दुनिया के अनेक जन्म भोगे। अभी वह रात पूरी हो करके दिन भी तो आएगा ना। तो यह रात अथवा दुख की जो जनरेशंस हैं, वह अभी पूरी होती हैं। अभी सुख की जनरेशन चालू होती है, तो उस सुख की दुनिया का फाउंडेशन यहाँ लगाना है। इसलिए बहुत संभाल रखनी है। अभी फाउंडेशन लगा तो लगा, नहीं लगा तो फिर सदा के लिए उस सुख को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। जो गाया भी हुआ है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, वह किस जन्म के लिए? इस जन्म के लिए, क्योंकि ऐसे जन्म तो हमारे बहुत है, परंतु सबसे महत्व इस जन्म का है, क्योंकि अभी हम अपना ऊंच जनरेशंस का फाउंडेशन लगा रहे हैं। कई समझते हैं कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसलिए समझते हैं कि यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। यह 84 लाख योनियों के बाद ही एक सुख का जन्म मिलता है, परंतु ऐसा होता तो सभी मनुष्य सुखी होने चाहिए, फिर इतना दुख क्यों भोगते हैं? मनुष्यों को तो मनुष्य जन्म में ही अपने जन्म लेकर के जो दुख अथवा सुख है या जो भी कर्मों का हिसाब है, वह भोगना है। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई जानवर, पंछी, पशु या वृक्ष आदि मनुष्य बनता है, नहीं। यह तो सभी बातें अभी बुद्धि में है कि मनुष्य को अपने कर्म का हिसाब मनुष्य जन्म में पाना है। और यह भी जानते हैं कि मनुष्य के अधिक से अधिक 84 जन्म होते हैं, बाकी जितना जितना जो पीछे आते हैं उनके जन्म भी कम रहेंगे। तो यह सभी हिसाब अभी बुद्धि में है। उसी हिसाब अनुसार हम जानते हैं कि हमारा अभी यह अंतिम जन्म है, जिसमें अभी हम नई जनरेशन अथवा सुख के अनेक जन्मों की जो प्रारब्ध है वह बना सकते हैं। इसलिए इस जन्म की महिमा है कि यह जन्म सबसे उत्तम है, क्योंकि इसमें हम उत्तम बन सकते हैं। तो इस जन्म की बहुत संभाल और अटेंशन रखने का है। यही टाइम है जबकि परमात्मा आकर के अभी हमको ऊंच बनाने का बल दे रहा है। तो अभी जब उससे बल मिल रहा है तो लेना ही है। ऐसे नहीं इस जन्म में हम आपे ही ऊंच बन जाएंगे, नहीं। बनाने वाला जब आया है तो उनसे अपने को बनना है। कैसे बनना है? उनके फरमान अथवा उनकी जो आज्ञा व मत मिल रही है उसको लेकर के। अभी उसकी मत व डायरेक्शन क्या है वह तो अच्छी तरह से बुद्धि में है ना। बी होली एंड बी योगी, मुझे याद करो और पवित्र रहो। तो यह बात अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से रखकर उनके फरमान पर अपने को चलाना है, तब अपना जो सौभाग्य है वह ऊंच बना सकेंगे, अथवा उस सदा सुख की दुनिया का सुख पा सकेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हो कि यह सब कल्पनाएं हैं? ऐसा तो ख्याल नहीं आता है ना। कल्पना क्यों समझी जाए, जबकि हम देख रहे हैं कि यह दुख की दुनिया है। यह तो कल्पना नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। तो जरूर सुख की दुनिया भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो अभी नहीं है लेकिन होनी तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं यह संसार सदा दुख का ही है। इसमें सुख और दुख दोनों ही है, परंतु सुख का भी समय है। ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी जो सुख है बस यही सुख है, यही स्वर्ग है, ऐसा ही सुख दुख है, परंतु नहीं। अभी के सुख को सुख नहीं कहेंगे। वो सुख जो था जिसमें हम सदा सुखी थे वह चीज ही और है, इसलिए सुख उसको कहेंगे। आज कल्पना क्यों समझते, क्योंकि आज वह है ही नहीं। परंतु यह अपने विवेक और इस नॉलेज के बल से समझते हैं कि जब दुख की दुनिया है तो जरूर सुख की दुनिया भी होनी चाहिए। कहीं तो ऐसा मार्ग बतलाते हैं कि भले दुख आवे परंतु तुम समझो कि मैं सुखी हूँ। इसलिए कई समझते हैं सुख की कोई इच्छा या तमन्ना नहीं रखनी है, इससे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। उसकी इच्छा ही क्या रखनी है, जो होता है उसमें ही सुख समझो। फिर भले रोग हो, भले कोई अकाल मृत्यु हो, कोई भी ऐसी बात हो, परंतु तुम अपने को समझो मैं सुखी हूँ। यह तो हो गया अपनी कल्पना का सुख। इसको थोड़े ही प्रैक्टिकल कहेंगे। जैसे दुख प्रैक्टिकल है, कई दुख की बातें प्रैक्टिकल में आती हैं, ऐसे सुख भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो अपने टाइम पर फिर उस सुख की दुनिया को आना है, लेकिन उसका फाउंडेशन अभी लग रहा है। उसके लिए हमें अभी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। इसमें जो बोएंगे सो पाएंगे, यह भी इसका नियम है। बाप कहते हैं, इस लॉ को तो मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। भल मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है तो आसमान को नीचे करूँ, धरती को ऊपर करूँ। वह समझते हैं भगवान तो कुछ भी कर सकता है, वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। परंतु भगवान व शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि वह मुर्दे को जिंदा करे, वह तो आत्मा को शरीर छोड़ने का ही है, वह तो बात ही नहीं है। अगर उसको जिंदा कर दूं तो क्या वह फिर मुर्दा नहीं बनेगा? फिर भी बनेगा। तो हर चीज का जो नियम है वह तो चलेगा ही, इसलिए इसमें कोई शक्ति दिखलाने की बात नहीं है। यह जो पांच तत्व हैं, हर तत्व का भी अपना नियम है, वह भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन एज अनुसार अपनी स्टेजेस में आते हैं। यह अर्थक्वेक होता है, यह फ्लड्स होती है, यह तूफान आता है, यह सभी होता है। यह भी अभी डिसऑर्डर में तमो प्रधान हो गए हैं, हर चीज में अभी तमो प्रधानता है। तो यह सभी राज बाप ही समझाते हैं कि अभी हर चीज बिगड़ चुकी है, अभी मैं आया हूँ तो हर चीज को सुधारता हूँ। इसके लिए मैं पहले मनुष्य आत्मा को सुधारता हूँ, उससे सब चीजें सुधर जाती हैं। फिर संसार जब सुधरा हुआ है तो उसमें सदा सुख है, फिर कोई चीज एक दो को दुख नहीं देती है। अभी सब चीजों से दुख मिलता है, तो इन सभी बातों को समझना और किस तरह से सृष्टि का अथवा इस संसार का चक्र चलता है उसे जानना, इसी का नाम है ज्ञान। इसी का मैं नॉलेजफुल हूँ, मेरे पास इसकी फुल नॉलेज है। यह कर्मों का कैसा खाता चलता है, कैसे नंबरवार आते हैं, इन्हीं सभी बातों को मैं जानता हूँ। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान को कोई मनुष्य यथार्थ रीति समझ नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य तो सब इस चक्र में आने वाले हैं ना। तो जो चक्र में आने वाले हैं, वह इन बातों को नहीं जान सकते हैं। जो चक्र से बाहर है उसके पास यह सब नॉलेज रहती है। तो बाप कहते हैं कि मैं ही आकर के फिर सुनाता हूँ, क्योंकि वह जानकारी मेरे पास ही रहती है और सबसे भूल जाती है। तो सबको बल देने वाला भी मैं हूँ, मेरे में ही वह पावर रहती है। और तो सभी जन्म मरण के चक्र में आकर के अपनी पावर्स खो देते हैं, तो मैं आता हूँ अपना बल देने के लिए। यह तो सीधी बातें हैं, इसमें मूंझने की बात है ही नहीं। इसलिए मुझे परमात्मा सर्वशक्तिमान जानी जाननहार ज्ञान का सागर कहकर महिमा करते हैं। यह मेरी महिमा कोई मुफ्त की थोड़े ही है। मैंने काम किया है और मेरा कुछ कर्तव्य है। मैंने बहुत ऊंचा काम यहाँ किया है, इसलिए महिमा है। जैसे मनुष्य की भी महिमा क्यों होती है। गांधी के लिए कहते हैं, वह बहुत अच्छा आदमी था, ऊंचा था। तो ऊंचा माना ऐसे नहीं एकदम बड़ा बड़ा था, ऐसे तो बड़ा नहीं था ना। बड़ा माना अपने कर्तव्य में बड़ा था। उसने अच्छे कर्तव्य किए, इसलिए उनको सब याद करते हैं, उनकी सब महिमा करते हैं। तो मनुष्य की हिस्ट्री में भी जो बातें आती हैं कि फलाने ने यह अच्छा काम किया, उसी अनुसार फिर उनका गायन भी होता है। तो परमात्मा की भी इतनी जो महिमा है, उसने भी हमारे लिए कुछ काम किया होगा ना। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि बस ऊंचा बैठा है, बस उसकी शक्ति चलती रहती है या उसका यह सब काम होता ही रहता है। उसने आ करके कुछ किया है, मनुष्यों को ऐसा ऊंचा उठाया है और इस तरीके से उठाया है, इसलिए उसकी महिमा है। तो अभी परमात्मा की महिमा और परमात्मा के कर्तव्य को समझना है। जैसे धर्म पिताएं भी जो आए हैं, जिनकी महिमा गाई हुई है, गुरु नानक देव, क्राइस्ट, बुद्ध आदि, उन्होंने भी तो उसके तरफ इशारा किया है ना। तो यह सब साफ बातें हैं, जिसको समझ करके पुरुषार्थ करना है। और बाप जो फरमान करते हैं कि मुझे याद करो और अपने कर्मों को अच्छा पवित्र रखो, तो उसी से तुम्हारा यह जो हेवन का अधिकार है, वह तुमको प्राप्त होगा। तुम वैसे भी कर्म तो करते ही हो, परंतु वह कर्म तुम्हारे रॉन्ग होते जाते हैं, उसी से तुम्हारा दुख बढ़ता जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, अभी समझ से करो। मैं जो समझ देता हूँ, उसको ले करके अच्छी तरह से करो, मेरे डायरेक्शंस पर रहो, मेरी मत पर चलो, तो फिर तुम्हारे जो एक्शंस हैं, वह राइट रहेंगे और उसके आधार से तुम सुखी रहेंगे। अपने एक्शन से ही तो बनना बिगड़ना होता है। उसको हम क्या बनाएं, कैसा बनाएं, उसकी हमको समझ चाहिए। वह अभी समझ दे रहा है, उस पर चलना है। इन बातों को समझ करके अपना ऐसा पुरुषार्थ रखना है। अच्छा, देखो कितनी सिंपल सहज बात है। इसके लिए मनुष्य कितने वेद शास्त्र, ग्रंथ पुराण और कितने हठ योग, प्राणायाम आदि करते हैं। यह सब बातें साफ करके बाप समझाते हैं। चलना तो कर्म से ही है, लेकिन कर्म को खाली सुधारते चलो। वह सुधारो कैसे, वह समझाते हैं। उसके लिए तुमको कोई विद्वान पंडित व आचार्य बनने की बात ही नहीं है। तुमको अपने कर्म को स्वच्छ बनाने का है। स्वच्छता यानी पवित्रता क्या है, वह बैठ करके स्पष्ट समझाते हैं कि तुम मेरी याद के बिना पवित्र बन ही नहीं सकते हो। भले तुम कोई देवता को याद करो, किसी के भी योग से तुम पवित्र नहीं बनोगे। पापों को दग्ध करने का बल मेरे पास है। इसलिए बाप कहते हैं, जब तक मेरे से कनेक्शन नहीं है, तब तक पावन नहीं बन सकते। जैसे बत्तियों का कनेक्शन मेन पावर हाउस से है ना, अगर वहाँ से कनेक्शन ना हो तो बत्ती में लाइट नहीं होगी, वह बल नहीं आएगा। इसी तरह से तुम्हारा कनेक्शन मेरे से हो, मैं हूँ मेन पावर हाउस, तो उससे कनेक्शन चाहिए ना। अगर उससे कनेक्शन नहीं होगा तो तुमको ताकत नहीं मिलेगी, और ताकत नहीं मिलेगी तो पाप दग्ध नहीं होंगे। पाप दग्ध नहीं होंगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तब कहते हैं, एक मेरे से योग लगाओ, मेरे बिना तुम्हारी गति सदगति नहीं हो सकती। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। वरदान है अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। महान आत्माएं वह है जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। स्लोगन है, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। ओम शांति।